نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة بقرة آيت نمبر 87 سے 96 86 سے 96 پیچھے سے بنی اسرائیلی کا قصہ تھا اسی میں اب مزید باتیں ہم اس کو پڑھتے ہوئے کچھ پچھلی باتوں کو بھی سمجھیں گے آئیے دیکھتے ہیں بس وہی بات جو ہر سبق سے پہلے کہتی ہوں پڑھتے سنتے وقت اپنی نظروں کو جمع دیا کریں اور اس طرح آپ کی نظریں گڑی ہوں ٹیکسٹ پہ کہ آپ اس وقت ادھر نہ دیکھیں نہ ادھر دیکھیں تو آپ کی انشاءاللہ قرآن کی آیتوں سے دوستی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. دیکھیے وَلَقَدْ تین تاکیدیں ہیں اس میں. یہ ایسے بھی جملہ ہو سکتا تھا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ضرور لکھا کریں, یعنی بات ایسے بھی ہو سکتی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو کیا کہا جا رہا ہے اور بے شک البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. تو جتنی تاکیدیں بڑھ جاتی ہیں اتنا اس کلام میں اثر بڑھ جاتا ہے, وہ چیز اتنی ہی زیادہ زو مانی ہو جاتی ہے. خیر ہم نے دی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. سوال پیدا ہوتا ہے کون سی کتاب تھی, تو یہاں الکتاب سے مراد تورات. اچھا تورات تو نہیں ہوتا, کئی لوگ تورات کہتے ہیں ہاں, تورات بولے تورات دی. ٹھیک ہے وریا شاباش وریا چمکتی ہوئی روشن, روشنی کے معنوں میں آتا ہے اس کا لفظ. باقی اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے. دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب دی. اس سے کیا پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کو کتابیں خود سے نہیں ملتی, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آپ کو مجھے بھی یہ کتاب اللہ ہی نے دی ہے, واللہ ہی میری آپ کی کسی کی کوئی اس میں بہادری نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے اور ہم اس پہ بڑے خوش ہیں. خیر پھر کیا ہوا وکفینا, پھر اس کے بعد لگاتار بھیجا ہم نے. یہ جو لفظ ہے نا وقفینا, اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا, یہ نیا لفظ آپ کو دکھ رہا ہے. اردو زبان میں اپنے لفظ ہوتے ہیں وقفہ, فلموں میں بھی وقفے ہوتے ہیں اور ڈراموں میں بھی وقفے ہوتے ہیں, تو وہی وقفہ ہے یہ. کف اس کا روٹ ہے قاف و, کف کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کو. یہ جو گردن ہے نا یا گدی کے نیچے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا, جو اکثر بہت دیر بیٹھنے کی وجہ سے تھک جاتی ہیں نا, تو وہ کف ہوتا ہے. وہ کیوں ہے, ایک کے اوپر دوسری چڑی ہوتی ہے. مراد یہ ہے لگاتار. آپ اللہ نہ کرے کسی کو کمر کا پرابلم ہو, سر آپ ان سے ایک لفظ سنیں گے کہ میری ڈسک ہلی ہوئی ہے. یہ جو ایسے 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 ہوتی ہیں ہماری, یہ اگر آپ میری انگلیاں دیکھیں نا اس طرح ایسے 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 پتلی پتلی پتھریاں سی ہوتی ہیں ہماری اسکن, ایسے جیسے زپ کی طرح کھلتی ہے بیک, تو جب اس میں ذرا سی کوئی ہل جائے نا تو دوسری بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے. تو وقفہ یہ کیفیت ہے, یعنی مراد کیا ہے لگاتار. لگاتار سمجھ آ رہے نا مانی, کہ اگر جیسے چین کا ایک ذرا سا سرا یا وہ زپ کا ذرا سا سرا ہل جائے تو پوری چین جو ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہم نے نبوت کا تار ٹوٹنے ہی نہیں دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, اور اس کی دلیل آج آپ کو قرآن میں کہاں ملے گی, جب آپ سورۃ الاعراف سے لے کر آگے بہت ساری جگہ انبیاء کرام کی مختلف دعوت کو دیکھیں گے. اور مزے کی بات دیکھیے, ایک سورت مثلا سورہ مریم کھول لیں, دوسری سورت شورا کھول لیں, اسی طرح سے آگے بھی ساری سورتوں میں اگر ایک نبی کی دعوت اس طرح کہے گی نا, نوح نے کیا کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, تو یہی بات اگلے نبی کے ذکر میں آئے گی ما لکم من الہ, پھر تیسرے نبی کا ذکر, ایک پوری سورت میں ریپیٹیشن ہوگی, یعنی ٹائم کی لمٹ بیچ میں رکاوٹ نہیں بنی. اور یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو نوٹ کیجئے گا. حق ایک ہوتا ہے نا, چاہے آپ ماضی میں سنیں یا مستقبل میں سنیں یا آج حال میں سنیں, اسی طرح سے حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے. مثلا اگر میں نے آج سے 10 سال پہلے یہ تفسیر کروائی, اب میں آپ کو 2016 میں پڑھا رہی ہوں, تو کیا میری وہ 2000 میں سمجھ لیجئے کہیں بھی باتیں بدل گئی ہوں گی آج, کیونکہ بات ایک ہی ہے. سٹائل بدل سکتے ہیں, ہر سال تھیم بدل سکتا ہے, ان ڈیپتھ جانا یا کبھی سمپل میں ہونا یہ بدل سکتا ہے, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی مفہوم بدل جائے. تو نبیوں کا مسلسل آنا کیا بتاتا ہے, کہ وہ پیغام ایک ہی لے کر آئے. اور یہاں کن کی بات ہے وقفینا, ہم نے وقفے سے بھیجا, من بعدی اس کے بعد, ہاتھ سے کون مراد ہے موسیٰ. تو یہ کن نبیوں کی پھر بات ہے, بنی اسرائیل میں آئے کتنے تھے, روح المانی ایک عربی کی تفسیر ہے, وہاں تک 4000 نبی آئے تھے صرف بنی اسرائیل میں. امیجن کریں آج کسی شہر میں 4000 عالم دین آ جائے نا, تو کافی حد تک وہاں کی گندگی دور ہو سکتی ہے اگر وہ سنت کے مطابق تبلیغ کریں. لیکن اس قوم کے پاس تو 4000 نبی बल्कि बाज ने तो कहा 70,000 नबी भी आए और सब हजरत मूसा की शरीयत पर थे। तो बात कफ़ीना वक्फा ये क्या बताता है कि अल्लाह ताला ने नबुवत का तार टूटने ही नहीं दिया। तफ़कियतन का मतलब क्या है? बाब तफ़ील है और तफ़ील में आपको मैंने पहले भी बताया हुआ शिद्दत भी होती है और कॉन्टिन्यूटी भी होती है। बहरहाल अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहें अल्लाह ने मुझे हमेशा अच्छे उस्ताद दिए, एक से जरा सा दूर हुए, एक मुल्क छोड़ा, दूसरे में गए तो दूसरी जगह उससे अच्छे मिल गए। मतलब यह है कि जिस कौम की अल्लाह ताला बेहतरी चाहता है ना, तो अल्लाह सुबहान ताला उसको दीन से जोड़ देता है। चलिए यहाँ बात हो गई, आयत के साथ नजरें ना हटाइएगा। अगला ऐसा देखिएगा, वह तईना और हमने दिया, ऊपर क्या था? वलकद आतईना। यहाँ क्या आ रहा है? वह तईना। यहाँ ये क्यों नहीं कहा वलकद आतईना? क्योंकि जो किताब मूसा को मिली थी, जो शरीयत मूसवी की बारीकियां थी ना, वो ईसवी में नहीं थी। फर्क क्या था? आप कहते कि तौरात में अहकामात थे शिद्दत के साथ, यानी आपके फिक थी बहुत सारी और उनकी शरीयत बड़ी लॉजिकल और खुश्क थी, जबकि हजरत ईसा अलैहि सलाम को मवाइज, मौइज़तुल हसना, दिल में उतरने वाली बात, नरम बात, हल्की बात की। तो यहां इतनी शिद्दत नहीं है। इंजील इज कंपैरेटिवली लाइट वर्जन, किसके मुकाबले में? तौरात के में। तो यहां आप देख लीजिए लफ्जों में शिद्दत ही नहीं है। वक़द आतैना ये भी होता, वलक़द आतैना नहीं, बस आतैना दे दी हमने, दी थी। ईसा इब्न मरियम अल बैजिनात, ईसा जो बेटे थे मरियम के, उनको अल बैजिनात। यहां बैजिनात से क्या मुराद है? लोगों ने इसको दो तरह से लिया। बात कहते हैं इससे मुराद वही उनके मवाइज हैं। और यहाँ फिर मेरे लिए जरूरी है बात करना कि जो लफ्ज इंजील हम बोलते हैं ना, कुरान में तो हमने ये पढ़ लिया कि तौरात कैसे आई, मूसा तूर पे गए, फिर वहां अल्लाह ने 40 रातों की मनाजात करवाई, पीछे बछड़ा बनने लग गया, खबर वही के जरिए से पहुंच गई, वो तौरात की तख्तियां लेकर के उनको बछड़ा पूछते देकर गुस्से में वो नीचे फेंकी, क्योंकि खिलाफ शरा चीज को देके गुस्सा आना तो ऐन ईमान में है, तो उसके साथ ही तख्तियां टूट गईं। फिर खैर जब वो सारा बछड़े का मामला रफा दफा हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मामला सीधा हो गया। ठीक है, ये तौरात तो हो गई, इंजील कैसे मिली? अब आपको मैं जब बात कहने लगी हूँ, आपको यकीन ही नहीं आना अगर आपने ये बात पहले नहीं सुनी। अगर आप पहली दफा कुरान पढ़ने लगे हैं तो आप कहेंगे हैं, हम तो सोचते हैं बिल्कुल जैसे तौरात मूसा पे नाजिल हुई, इसी तरह इंजील नाम की भी एक किताब होगी, फिर ईसा भी कहीं को किसी हिरा में होंगे तो वहां उतरी होगी, जैसे नबी सल्लम पे गारे हिरा में कुरान की वही नाजिल हुई। तो इंजील मूसा पे नाजिल नहीं हुई थी, मूसा अलैहि सलाम के अकवाल, यानी उनको आप कह लीजिए कि जब मैं आपको सिर्फ सिंपल बात करती हूँ, लेकिन फिर आपको बता दूं इस मौजू पे सूरह आल इमरान में बात होती है जाके ज्यादा। इंजील की बिल्कुल हैसियत वो है जो नबी सल्लम की हदीस की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो कौल फेल बातें की, जो शुरू में तो वर्बल थी ना, जुबानी थी, वक्त के साथ साथ उसको लिखा गया। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम की जिंदगी में एक किताब की सूरत में इंजील नहीं थी, बल्कि आप बड़ी उससे भी हैरान कुन बात लिखाने लगी हो कि इंजील तो बाद में उनके हवारियों ने पाइल अप की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके बाद लोगों ने लिखी, आपकी जिंदगी में भी लिखते थे, लेकिन बाद में मुहद्दिसीन आए, उन्होंने उसको जमा किया, उस पर बहुत लंबी बातें हुई। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मवाइज देता, और इंजील में आपको थे क्या? अल्लाह की मोहब्बत के नाते गाने, गाने से मुराद कह लीजिए सॉन्ग्स। आज आप किसी भी चर्च में से गुजरे ना संडे को तो सॉन्ग्स गाते हैं। हमारा एक ऐसा स्कूल था अमेरिका में कि जहाँ बिल्कुल हमारे स्कूल की ऐसी स्ट्रिप मॉल था, वो भी हम ग्राउंड फ्लोर था, लेकिन स्ट्रिप मॉल अमेरिका में ऐसे होती है कि एक ही पार्किंग लॉट होता है और उसके इर्द यूँ दुकानें होती हैं लंबी सी, तो उसमें से पहली हमारे पास थी स्कूल के लिए। तो बिल्कुल हमारे साथ जो था वो चर्च था। सारा हफ्ता तो हमें कुछ मसला नहीं होता था, बट हमारे पास वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते के 7 दिन क्लास होती थी। तो चर्च जिस वक्त संडे को वो अपनी इबादत शुरू करते, दीवारें भी वहां इतनी पतली होती हैं हाथ मारो टूट जाती हैं। तो वो जब हम कुरान बच्चियों को पढ़ा रहे होते थे, इधर तजवीद होनी तो उधर म्यूजिक चल रहा होता था, तो बाज़ तो ये फील हो रहा था म्यूजिक के साथ कुरान पढ़ रहे हैं। कभी एक आध दफा प्यार से उनको जाके अगर कहें थोड़ा सा आहिस्ता कर लें, कभी किया, लेकिन फिर वो कहते थे नहीं, हमारा गॉड ऊंचा सुनता है। यानी और वो उसमें क्या करते थे, हम इंग्लिश में समझ भी लोगों को आ रही होती थी, बच्चियों को सबको आती है, और आई लव जीजिस एंड जीजिस जीजिस जीजिस। तो इंजील में मोस्टली ऐसी ही चीजें थी जो दिलों को नरम करने वाली थी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी। अब बैयना से एक तो मुराद हो गई इंजील, दूसरा इससे क्या मुराद है, जो मोजजात मिले, मुर्दों को जिंदा कर लेते थे, कोढ़ी का मरीज ठीक हो जाता था, और इसी तरह के ज्यादा तिब्बी नौयत के उनके इश्यूज थे, अल्लाह सुबहान तआला ने वो सब कुछ अता कर दिए। वह अय्यद ना हो और हमने कुव्वत दी उनको। अय्यद ना हो का लफ्ज में क्या है, यद, यद किसको कहते हैं, हाथ को, यद बैजा उर्दू में सुनते हैं या दाल दाल। तो यहां अगर आपको मैं ठेठ तर्जमा कराऊं तो क्या होगा, हमने हाथ दिया उसको। तो हाथ देना किसको कहते हैं उर्दू में भी, पंजाबी में बल्कि बोलते हैं, मतलब ये मदद करना, कोई चीज पकड़ रहे थे या वो मजदूर काम कर रहे होते हैं ना, तो दूसरे उनको ईंटे पकड़ा रहे होते हैं, तो यहां फिर हाथ से मुराद कुव्वत देना, ताकत देना। हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत दी कैसे, बिरूहिल कुदुस, रूहुल कुदुस से। रूहुल कुदुस के लफ्ज को अगर आप देखें ना, तो दो लफ्जों का मजमुआ है, नंबर एक रूह और दूसरा है कुदुस। अब रूहुल कुदुस क्या है, इसको अगर लफ्जों में देखें तो रूह मैंने रूह स्पिरिट है, और कुदुस कहते हैं पाक को, बैतुल मकदस का लफ्ज भी इसी से है। अब इसे क्या मुराद है रूहुल कुदुस से, तो इसकी मुख्तलिफ तफसीरें आती हैं। इसे एक मुराद क्या है रूहुल कुदुस से, कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह डाली, क्योंकि आपकी पैदाइश दूसरों से मुख्तलिफ थी। आम बच्चे तो इसबाब के साथ पैदा होते हैं ना, ईसा अलैहिस्सलाम बगैर किसी सबब के पैदा हुए थे, ठीक है। तो रूहुल कुदुस से मुराद क्या लिया जाता है, अल्लाह की तरफ से जो रूह डाली गई ईसा में, ये भी एक कॉल है। दूसरा रूहुल कुदुस से मुराद क्या है, इंजील भी एक मानी लिया गया, ये भी इल्मे वही कह लीजिए। तीसरा मानी जो बहुत ही मारूफ है और वो काफी करीब क्यास है, रूहुल कुदुस से मुराद जिब्राइल है। रूह से मुराद जिब्राइल, कुदुस से मुराद अल्लाह की जात। तो जिब्राइल को रूहुल कुदुस क्यों कहते हैं, इब्ने जरीर तबरी एक बहुत मारूफ अरबी की तफसीर है, वो कहते हैं रूहुल कुदुस से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। हर जी रूह में जान जिब्राइल की तरफ से डलती है, कैसे, वो फूकते हैं आ जाता है, हदीस में आता है जब बच्चा माँ के पेट में 4-5 हफ्ते का होता है तो फिर फरिश्ता आता है और उसमें फूकता है तो रूह पड़ती है। इसी तरह बीबी मरियम को भी फूका था, वो उनकी फूक जब रहम तक गई तो वो प्रेग्नेंट हो गई। बस आप ये कह लीजिए कि जो काम आम लोग बच्चों का माँ के पेट में 4-5 हफ्ते के बाद होता है ना, वही काम जो था वो ईसा अलैहिस्सलाम का कंसीव करने के लिए हो गया। तो बहरहाल ये भी है कि इसका मतलब आपको समझ आ चुका है। फिर इसके बाद आप देखिए कि रूहुल कुदुस से मुराद एक और चीज भी है हमारे पास, वो है ईमान। तफसीर सादी बहुत खूबसूरत तफसीर है, आज के अब्दारुसलाम ने उसको उर्दू में भी छापा है। वो लिखते हैं कि रूहुल कुदुस से मुराद वो ईमान है जिसके जरिए से अल्लाह ताला अपने बंदों को कुव्वत और इस्तकामत अता करता है। मांगेंगे अपने लिए कि अल्लाह तू हमारे लिए, हमें भी वो ईमान दे कि जो हमें खड़ा कर दे, वो ईमान जो आपको घर से मस्जिद तक न जाने दे, वो जन्नत में कैसे ले जाएगा। तो याद रखिए आपको किसी नेकी पे जमाने वाली चीज आपका ईमान है। बहुत शौक और तपाक से लोग नेकियां शुरू करते हैं, आपने भी ये कोर्स अभी नया नया शुरू किया हुआ है, और आपसे जितने लोग आप इधर है ना, मेरा ख्याल है इतने ही लोगों को मैं औरों को भी जानती हूँ कि जिन्होंने कभी मेरे से वादे किए हैं, कभी आपसे किए हैं, लेकिन कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो जो चीज बंदे को जमाती है ना किसी चीज पे, वो ईमान है। दुआ करें कि ईमान ऐसा मिल जाए कि जो हमें हमारी नेकियों पे जमाए, या फिर ऐसी सोहबत मिल जाए, ऐसे साथी मिल जाए सर के ऊपर खड़े होकर हमसे नेकी करा ले, ये भी खुशकिस्मती होती है। और अल्लाह जब किसी का भला चाहता है ना, तो उसको किसी नेक का साथ दे देता है। शौहर नेक है, वो मस्जिद नमाज में आपको सोने ही नहीं दे रहे, उठो नमाज पढ़ो, आप खुश हो, आपके शौहर आपको फजर के लिए उठाए या आपको ईशा पढ़े बगैर सोने ना दे, ये आपकी खुशबख्ती है। तो जरूरत है इस बात की कि इंसान अपने अंदर ये ईमान लेकर आए। इसी तरह से इब्ने अब्बास कहते हैं कि रूहुल कुदुस से मुराद वो नाम है जिनसे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। हजरत ईसा कुछ पढ़ के फूकते थे तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। हजरत ईसा की पाकीजा रूह जो मरियम के बेटे थे जिन्हें अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। बहरहाल इल्मे वही भी इसकी एक तफसीर की गई है, और अय्यद ना हो बिरोहिल कुदुस के अगर सारे मानों को जमा करें तो किसी न किसी जगह इसमें जिब्राइल का नाम आएगा। ठीक है। और अगले पारे में अगले लेसन में हम लोग जिब्राइल को भी इंशाल्लाह थोड़ा सा खोल के देखेंगे। मुराद ये कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिब्राइल रहते थे। जरा सा नोट कीजिए, ईसा का बाप नहीं था। हम अमूमन बिन बाप के बच्चों को कैसे पिटी फील करते हैं उनके लिए। हाँ, इसका बाप नहीं, तो जिसका बाप नहीं था ना, अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता मुकर्रर कर दिया। लोग हजरत ईसा का मजाक करते थे, लोग हजरत ईसा को वलदुज़्ज़िना कहते थे, नऊज़ु बिल्ला। ये जो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे तो वो भी जिब्राइल ही फूंक मारते थे, तो वो हो जाता था, लेकिन बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होता था। तो अल्लाह ने उनकी मदद की, कैसे की, नंबर एक, और जिब्राइल ही के जरिए इंजील भी दी गई। देखिए दो चीजें हैं, लव जिब्राइल पे भी मेरा दिल करता है कभी एक फुल सेशन दूं आपको। दो चीजें इस इंसानियत की जान है, रूह है। एक हमारे जिस्म की जान, बदन खाली है, रूह पड़ती है तो हम जिंदा हो जाते हैं, ये भी जिब्राइल के जरिए आती है। और वही जो रूहानी जान है हमारी, वो भी जिब्राइल से ही है। यानी जिब्राइल का मुकाम बड़ा आला है। कहीं आगे जाके इनकी खाली इन्हीं पे बात होगी तफसीर में, तो इंशाल्लाह कुछ चीजें शेयर करूंगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पाक रूह से कैसे मदद की गई, एक तो दुनिया में उनके साथ रहते थे जिब्राइल, फिर दूसरा इनको इंजील अता की गई, यानी अल्लाह के हुक्म से जो वही थी उनके दिल पे इल्का करते थे। और तीसरी बात यह कि जब इनके कत्ल की कोशिशें की गई, दुश्मन हो गए थे यहूद इनके, और हक में वक्त के साथ मिलकर इनको क्लीप पे चढ़ाने की कोशिश की, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही उनको साथ लेकर ऊपर चले गए। तो गोया कि यहाँ तक जो बात हुई उसका खुलासा क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह तौरात दी गई, इसी तरह अल्लाह सुबहान तला ने ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात भी दी और कुछ मोजज़ात भी दिए, और वो मुख्तलिफ चीज़ों से काम करते थे। और ये सारी चीजें अगर आप एक ही स्ट्रेच में पढ़ेंगे तो सूरत आले इमरान की आयत 49 का रेफरेंस लिख लें, दो लाइनें भी छोड़ दें, घर जाके वहां से आयत ढूंढ के लिख लीजिएगा कि जिसमें रसूलन इला बनी इसराइल व रसूलन इला बनी इसराइल अन्नी कद जीतुकुम बी आयत मिन रब्बिकुम, और आगे उनके सारे मौजज़े हैं कि मिट्टी से परिंदे बनाते थे, फिर उसमें फूंकते थे, और मुर्दे अकमा यानी मादरजाद अंधे को ठीक करते थे, बर्स वाले को, और इसी तरह मुर्दों को, और घरों में क्या छोड़ते हैं उसको भी ये बता देते थे। और ये जो बात हुई ना कि बनी इसराइल में बहुत सारे पैगम्बर आए, कुछ मारूफ पैगम्बरों के नाम लिख लें, फायदा होगा आपको आगे जाके इंशाल्लाह। सबसे पहले मूसा के बाद कौन आए, हारून अलैहिस्सलाम। इसी तरह से जुल्किफिल, इलियास, अलयसो, दाऊद, सुलेमान, जकरिया, यूनुस, उजैर और ईसा अलैहिस्सलाम और यहया वगैरह, ये सब बनी इसराइल के नबी हैं। ठीक है, जो इससे पहले थे वो आगे दूसरे जगह पे उनका तज़किरा आएगा। सूरत मोमिनून की आयत 44 में भी इसी बात का जिक्र है कि सुम अरसलना रुसुलना तत्रो, तत्रा का वही मानी है जो यहाँ कफ़ईनाक है, कि हम तरतीब के साथ रसूलों को भेजते ही रहे। चलिए ये भी बात हो गई, आगे क्या हुआ, अब बड़ी अहम बात है, सीधे होके बैठ के सुने और अपने दिल पर इसको महसूस करें। अफकुल्लमा, आ क्या, फा जब, कुल्ला जब, कभी मां कभी भी, सिंपल इसको उर्दू में कैसे बोलते, जाकुम, कुल्लमा या जब कभी, वेन एवर। इंग्लिश में आप एक जुमला बोलते हैं वेन एनीथिंग हैपन, इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन एवर एनीथिंग हैपन, व्हेन के बाद जब एवर लग जाता है ना, वही स्टाइल इधर है। आफा कुल्लमा, आ क्या, फा पस, कुल्ला जब कभी, माँ, यानी माँ का लफ्ज अमूमन नकिरा को भी और छोटा करता है, बिल्कुल आम, यानी हमेशा ही ऐसा हुआ। क्या हुआ, जाकुम, आया तुम्हारे पास, रसूल, उन कोई रसूल, नकिरा में आया, एनी रसूल, एनी पैगंबर, किस चीज के साथ, बीमा, साथ इसके जो, ला तहवा, नहीं ख्वाहिश की, नहीं पसंद किया, किसने, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्सों ने, तुमने क्या किया, इस तकबर, तुम तकबर किया, तुमने बड़े बन गए तुम, फिर उसका इजहार कैसे किया, फरीकन कज़्ज़ब तुम, फिर एक गिरोह को, फिरके को तुमने झुठलाया, व फरीकन, और एक गिरोह या फिरके को, तक्तुलून, तुम कत्ल करते हो। बहुत प्यारी बात है, अगर आप इसमें से जरा सी तवज्जो करें ना, देखिए जब नबी कौमों के पास किताब लाते हैं तो क्या वो किताब उनकी पसंद की होनी चाहिए, मेन्यू कार्ड आपके हाथ में दिया और पूछा व्हाट डू यू वांट टू चूज, कोरमा चाहिए, बिरयानी चाहिए, रोटी चाहिए, सालन चाहिए, ये कैफियत हो, नहीं, आई डोंट लाइक सैलड, नहीं, मुझे प्याज नहीं चाहिए, मुझे मिर्ची नहीं चाहिए, नहीं। आप इसको यूं समझिए कि जैसे आप किसी भी ऐसे होटल में जाएं जहां बफे सिस्टम हो, खाने लगे होते हैं, 10-15, वो कहते हैं आपको इसमें से जो अच्छा लगता है वो आप खा लें। हम कहते हैं सब चे एक एक चमची चमची सारों की डालते हैं और बाद में कहते हैं मज़ा किसी का भी नहीं आया। 10 चीज़ें अच्छी पड़ी हुई, तो क्या ज़रूरी है कि आपको 10 अच्छी लगे? दो नहीं अच्छी लगती, आप उसको ओवरलुक कर दें। आपको 10 सैलड्स में से 2 अच्छे लगे, 4 नहीं अच्छे लगे, निकाल दीजिए। अल्लाह ताला अपने नबियों के जरिए जब भी शरीयत भेजता है तो वो लोगों की पसंद नापसंद को देखकर नहीं बनाता, बल्कि जरूरत का तकाजा, हालात के मुताबिक किस किस चीज की बात होगी, करना क्या चाहिए। अल्लाह जो कहता है ले लो, आप चले होटल में तो आपकी मर्जी है, कुछ खाएं कुछ ना खाएं, लेकिन जब अल्लाह की किताब है तो पीछे क्या बात हुई, खुजू मात ही ना कुंभ हुआ, सारा ले लो। चले इससे बिल्कुल पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं, अफतू में नू नबी बात दिल किताब ही बतख फुरू नबी बात, पिक एंड चूज करते हो, अपनी मर्जी से लेते हो, जो दिल चाहता लेते हो, जो दिल चाहता छोड़ते हो, रिजेक्ट करते हो, कुछ डस्टबिन में फेंक देते हो, कुछ प्लेट में छोड़ देते हो। तुम्हें करना क्या था, टेक ऑल, सब लो। आप अपने बच्चे को प्लेटर बना के देते हैं और आप कहते हैं बेटा आपको ये सब खाना है, एंड पे प्लेट साफ होगी। अच्छी माँ यही कराती है, वो नहीं कि बच्चे अंदर से ब्रेड सारी खा लें और किनारे माँ को दे दें, लो इसका हार बना लो गले में पहन लो, ये अच्छा तरीका नहीं होता। कौमें क्या करती हैं अल्लाह के नबियों के लाए हुए पैगाम के साथ, जो चीज अच्छी नहीं लगती, ला तहवा का लफ्ज यहाँ बड़ा काबिल गौर है, जो नहीं पसंद करते, जिसकी इनको ख्वाहिश नहीं है। अरबी जुबान में ख्वाहिश के लिए 5 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कुरान में, अमल, पिछले सबकों में हम पढ़ चुके, उमनिया, अमानी जिसकी जमा थी, यहां आ रहा हवा, इसी तरह शहवा और वतर, ये सारे लफ्ज हम पढ़ेंगे। अमल और उमनिया जो है वो तो हम पीछे बहुत बात कर चुके ना आरजू के लिए, यहां थोड़ी सी बात करूंगी हवा की। हवा बमानी ख्वाहिश नफ्स, नफसानी ख्वाहिशात, और इसकी तरफ मिलान होता है। हवा यहवी ऊपर से नीचे गिरने को कहते हैं, ये जो हवा चलती है ना वो भी यही है। हवा कैसी है, चीजें उड़ती हैं। मैं 2-4 दिन पहले आपने देखा ही होगा यहाँ कितनी हवा थी कि पत्ते ऐसे लग रहा था हिल के रहे दरख्त गिर जाएंगे, तो मैं उस दिन खड़ी गौर कर रही थी कि हवा क्या चीज है, ना हाथ में आती है ना महसूस कर सकते हैं, ये अल्लाह की कुदरत ही है, वरना आप और मैं नहीं कर सकते। इवन उसी में देखा कि आसमान पे जो बादल है उसमें भी ऐसे वेव्स बन गई, तो मैंने नोट किया कि जैसे ये नीचे हवा की वजह से पत्ते कभी सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कभी कुछ, तो ये आसमान के बादल इस हवा से साफ लग रहा था ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, पैसेजेस बने हैं। तो हवाएं उड़ती हैं ना, इसी तरह ख्वाहिशें भी बंदे को उड़ाती हैं। जब ख्वाहिशें दिमाग पे आती हैं ना, वल्ला ही ना बंदे को अपना नफा अच्छा लगता है ना नुकसान की परवाह होती है, कहता है बस मुझे ये ख्वाहिश तो पूरी करनी है, आई नीड टू हैव, मुझे चाहिए, मैंने लेना ये। तो हवा ऐसी ख्वाहिशों को कहते हैं जिनके पीछे लगकर बंदा अपनी कदर मंजिलत खो दे। अलमहवा, यही लफ्ज के आगे हवा से पहले वो मीम डाल दें तो थोड़ा सा बदल है, गड़े को कहते हैं, रिच, नीचे जाके गिरते हैं ना। सच पूछिए कितने ही लोग हैं दुनिया में, कितने बड़े बड़े काम करके जाते हैं लेकिन वो कुछ बड़ा काम ना कर सके। करना चाहते थे आप, जहां अपने आप से पूछे कुछ करना चाहती हूँ, करना चाहती हैं, फिर बीच में रुकावट क्या चीज बनती है, हवा। वो ख्वाहिश किसी भी चीज की होती है और हवा अमूमन बुरे मानों में इस्तेमाल होता है। इब्ने फारस एक अहले लुगत है, कहते हैं हवन नफ्सु खालिन मिन कुल्ली खैरिन। अगर आपने अरबी से समझ लिया तो खुश हो गए होंगे। ख्वाहिशात नफ्स वो ख्वाहिशें हैं जिनमें कोई भलाई नहीं होती, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, 2 दफा लफ्ज आता है, नहन नफ्स अनिल हवा फाइनल जन्नत ही अलवावा, कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता है और अपने आप को ख्वाहिशात से रोकता है उसका ठिकाना जन्नत है। मेरा लिए सूरत अब्बस है या उससे इर्द गिर्द की कोई सूरत है। तो क्या पता चला कि नफ्स की ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। देखिए हमारी शरीयत में खैर ख्वाहिश के पूरे होने की पूरी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन शैतान ने जैसे पूरी जन्नत को छुड़वाकर मना किया हुआ एक दरख्त शजरे ममनुआ उसका फल चखा दिया, आज शैतान दुनिया में भी इंसानों के साथ यही करता है। तो जब भी कभी आप बहुत ज्यादा बेचैन हो ना अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, तो उस वक्त खुद से कहें क्या इतनी सी देर की ख्वाहिश पूरी करके हमेशा के लिए महरूम रहना चाहूंगी। दुखी होना चाहूंगी। आप देखेंगे कि आज भी दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता जब तक ख्वाहिशों पे काबू ना पाए। आपके बच्चे स्कूल जा सकते हैं अगर वो ख्वाहिशों पे काबू ना पाए। बच्चे को तो सोना है तो माँ भेजती है, बस इसी को तड़प मिले। जिस तड़प और तलब के साथ हम दुनिया की तरक्की के लिए अपने बच्चों के पीछे लग के उनको भेजते हैं, इसी तरह हम सब के मालिक को इस बात का पूरा यकीन है कि आज चंद थोड़ी सी आज की कुर्बानी कल तुम्हें जन्नतों में भी अच्छा करेगी और दुनिया में। तो आज इस दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं बंदा कर पाता ख्वाहिशों पे काबू पाए बगैर, तो जन्नत कैसे मिलेगी? हदीस में आता है, खुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारह, जन्नत नफ्स पे बोझ पड़ने वाली चीजों से घेरी गई है, और इसके बरक्स खुफ्फतिन नारु बिश्शहवात, जहन्नुम शहवात लस्ट ख्वाहिशात से घेरी हुई है। तो सेल्फ कंट्रोल चाहिए और इसके लिए बहुत सब्र चाहिए होता है। ये दुनिया इतनी अट्रैक्शन वाली है, कैसे कैसे हमें इर्द गिर्द खींच लेती है। हम एक फोकस्ड ड्राइवर की तरह जब तक जिंदगी की इस शाहराह पे नहीं चलेंगे, हर ख्वाहिश ऐसी के उस पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले वाली सूरत होगी। इसलिए जरूरत है कि हम थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं, ऑयली खाने ना खाओ, कम खाओ, मीठा कम खाओ, सेहत खराब होगी, चॉकलेट कम खाओ, चीनी कम खाओ, वॉक ज्यादा करो, फ्राइड चीजें ना खाओ। तो ये सारा कुछ आपको एक हेल्दी जिंदगी देता है ना। तो इसी तरह गुनाहों का परहेज, मकरूहात से रुकना। लेकिन कौमें करती क्या है कि वो चीजें छोड़ने की बजाय नबियों के साथ क्या रवैया उनका, पहला रवैया देखिएगा, अनफुसकुम इस्तकबर तुम, लाता हुई अनफुसकुम तो हो गया, इस्तकबर तुम, तुमने तकबर किया। अब ये कौन सा तकबर है और इस तकबर में क्या लिखा हुआ है? हक को झुठला देना और लोगों को हकीर जानना। क्या पता चला कि कहते हैं हाँ मैं इस बात पे अमल करूं, हमें पता है ये हुक्म है कुरान में, बट मैं इतने बड़े अफसर की बीवी और मेरे पास तो इतनी डिग्री है और मैं तो सारा दिन वेस्टर्न लोगों के खूब बीच में घूमती फिरती हूँ, अब मैं मानू? तो यहां तकब्बुर अपनी असल सूरत में आए। हम कहते हैं किसी का अच्छे कपड़े पहनना तकब्बुर है, किसी का अच्छी गाड़ी में बैठना तकब्बुर है, नहीं, बतरल हक की वगैमतिन नास। अपने आप से पूछिए, अभी तो आपका हिसाब बड़ा आसान है, अभी तो सिर्फ 90 और 7 कह लीजिए, तकरीबन आपकी कह लीजिए कि 100 आयतें भी नहीं पूरी हुई, साथ साथ हिसाब लेते रहे। कुरान की आयतों को सुनकर, हुक्मों को सुनकर अमल की आदत पड़ रही है या तकब्बुर की? और बाद में बहुत लंबा फिर पेंडा हो जाता है ना, तो बंदा कहता है अब किस किस बात पे अमल करूं, लिहाजा वो उसको भी छोड़ देता है। तो लिहाजा आपने मैंने क्या करना है, आदत डालनी है मानने की। बच्चे को अगर एक दफा अब ना कहने की आदत पड़ जाए ना, आप देखेंगे हर चीज में फिर वो माँ बाप से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता, क्यों कैसे वैसे ये। और पीछे बनी इसराइल का किस्सा है, अल्लाह ने उनको उनकी असल जिम्मेदारियां याद दिलाई, अब उनके बाप दादा के जो तारीख के बाप दिखाए जा रहे हैं कि देखो तुम्हें अल्लाह ने क्या कमी छोड़ी। अच्छा बच्चा बाद में कहता है आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मुझे पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं क्या नहीं, तो आप क्या कहते हैं, क्या नहीं किया, स्कूलों में छोड़ा, यहाँ किया, कॉलेज में किया, वो किया, लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं। अब एक बच्चा पढ़े ही ना, तो माँ उसको 1 घंटा दूर जाके छोड़ के आए या बाप उसको 1000 क्रोन महीने का दे दे, एक ही बात है। तो लिहाजा सारी बात जितनी है उसका खुलासा क्या निकल रहा है कि हमें भी अपनी आदत को चेंज करना है। चलिए यहां तक तो अपनी बात थी, अगले जुमले पे गौर कीजिए, फफरीकन कज़्ज़बतुम, फिर एक गिरोह को तुमने झुठला दिया। यानी रसूल जो मोहसिन इंसानियत होते हैं, जो लोगों को अबदी बुरे अंजाम से बचाने के लिए आते हैं, बजाय इसके कि तुम उनके थैंकफुल होते, शुक्र गुजार होते। तीसरा पारा आपको होता है नबियों के नाम पे ही है, तिलकर रसूल, तुम क्या करते हो, झुठलाते हो। अच्छा कज़्ज़ब तुम क्या है, माजी, झुठला दिया, डिनाई करते थे, माजी का सीगा आ रहा है ना। अगर उर्दू इसका तर्जुमा आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक फिरके को तुमने झुटला दिया था, हो गया, बट दूसरा गौर कीजिएगा, फरीकन तक्तुलून, लेकिन एक ऐसा गिरोह है नबियों का जिनको अभी तक कत्ल कर रहे हो। वहां माजी, यहां मुस्तकबिल या हाल, मुजारे क्यों है, पीछे भी ये अंदाज गुजरा था, किसी को समझ आई? कत्ले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि तुम तो अभी भी मदीना में आकर अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया नहीं था, बस इन्होंने कत्ल करना चाहता, क्योंकि झुटलाता बंदा उसका जिसको माने फिर ना उसकी बात माने। तो इन्होंने माना नहीं नबी को, इसलिए कज़ब तुमने नहीं कहा यकज़िबून, हाँ कत्ल की कोशिशें की। और उन्होंने एक से ज़ायद बार नबी सल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। तो क्या पता चला कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदलना चाहते हैं। कहते हैं उस आवाज़ को बंद करा दो जो हमें तब्दील करना चाहती है। अफसोस के साथ आज हम मुसलमानों में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आज नबी नहीं आते, बट नबी का पैगाम देने वाले मुबल्लिगीन तो होते हैं ना, उलमाए कराम तो होते हैं ना। लोग कहते हैं छोड़ो छोड़ो, सुनना नहीं, इनकी बातें क्या करनी। तकब्बुर की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, इनाद होता है, दिल में ख्वाहिशात पड़ी हों तो नबियों की बात वैसे भी मुश्किल लगती है। एक शख्स है जिसकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा पंप एंड शो नहीं है, नो ग्लैमर, उसको दीन की बात सुनना मानना बहुत आसान लगता है, क्योंकि उसके पास कोई रुकावट नहीं है। मसलन आप देखिए ना, आपका घर खाली है तो कोई कहता है ये टेबल ला के रख लो, आप खुशी से ले आएंगे। और अगर आपका घर पहले ही सामान से भरा पड़ा है तो आप सोच में पड़ जाओगे। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को बहुत सारी रौनकों से पुरौनक किया होता है ना, उनके लिए किताब की जगह नहीं रहती जिंदगी में। वो कहते हैं क्या इनके साथ, इस किताब के साथ पाबंदियां लगा लें, मुश्किलों में पड़ जाएं, ये कर दें वो कर दें। लिहाजा ऐसे लोग जो हैं फिर अपने आप को जाया कर देते हैं। अब आप जरा सा थोड़ा सा चंद लम्हे के लिए अपने लिए सोचें। मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ, कोई एक ख्वाहिश अपनी सोचे जो आपको अल्लाह के रास्ते से दूर करती है। यकीन करें किसी की ज्यादा सोने की होगी, किसी की ज्यादा खाने की होगी, किसी की ज्यादा बोलने की होगी, किसी की ज्यादा शॉपिंग होगी, किसी की ख्वाहिश जो है ना वो ऐसे ही बेतुकी इधर की बातें उधर होगी, जहां बैठ के उसको फेंके। सवाल पैदा होता है, यहाँ एक क्वेश्चन लिखिए कि रसूलों की लाई हुई तालीमात इंसान की ख्वाहिश ना उसके खिलाफ क्यों होती हैं? अल्लाह ताला क्यों नहीं हमें वो दीन दे देता जिसमें शराब हलाल, जिसमें म्यूजिक हलाल, जिसमें कपड़े पहन पहन के अपना हुसन दिखाना हलाल। दिल तो यही चाहता है ना कि हम पक्के मोमिन होते अगर पर्दे का हुक्म ना होता, और दाढ़ी नहीं क्लीन शेव का अल्लाह हुक्म देता हम 100% मोमिन होते। तो जवाब लिखिए इसका, क्योंकि रसूलों की तालीमात फितरत के मुताबिक होती हैं, और फितरत हमारी मुखलिस है, ख्वाहिशों के खिलाफ होगी। और दूसरी इसकी वजह यह कि ख्वाहिशात नफ्स ना ये शैतान की उकसाहट का नतीजा होती हैं, वो पीछे से वसवसे डालते हैं, फवसवस लहुम शैतान। तो शैतान हमेशा हमें बुरी चीज को अच्छा करके दिखाता है। यहूद ने क्या किया किताब के साथ? 3 रवैये आपके सामने आ गए हैं। इस्तकबर, तो सवाल आपको दिया जा सकता है कि आपकी असाइनमेंट में कि यहूद का तौरात के साथ क्या रवैया था, तो आप कहेंगे तकब्बुर का, तकजीब का, और लाने वालों के कत्ल का। जुबानी जुबानी बड़े खुश होते थे, अजमत समझते थे उसको, अपनी कामयाबी की अलामत समझते थे, इज्जत बड़ी थी। जैसे आज हम में से बहुत सारे मुसलमान कुरान की बड़ी इज्जत करते हैं, जुस्तानों में लपेट कर गोटी और दबके का काम करा के बेटियों की शादियों में कुरान देते हैं, लेकिन उससे रहनुमाई नहीं लेते। आज हम भी इस कुरान की इज्जत करते हैं, इसको बांटना बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन इसको रहनुमा नहीं समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूद ने किन नबियों को झुटलाया? तो यहूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया। जरा यहाँ बड़ा खूबसूरत नुकता है, यहूद सिर्फ मूसा को मानते हैं अब इन मशहूर अंबिया में से, मोहम्मद सल्लम को भी नहीं मानते तो ईसा को भी नहीं मानते, बल्कि उनके तो कत्ल की कोशिशें की थी, तभी तो अल्लाह ताला ने उनको आसमान पे उठा लिया। किनको कत्ल किया? तो लिखिएगा, यहूद ने यहया और जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। हजरत जाबिर की रिवायत है, खैबर की यहूदी औरत बकरी का गोश्त जहर आलूद करने करके नबी सल्लम की खिदमत में हदीये के तौर पर लाई। अल्लाह के नबी ने एक हाथ उसमें से उठाया और खाना शुरू किया, और चंद सहाबा ने भी शुरू किया। जब कुछ खा लिया तो आपने फरमाया खाने पर से हाथ उठा लो, और जो हाथ जो यहूदी औरत उसको बुलाने को भेजा, जब वो वापस आई तो आपने पूछा क्या तूने गोश्त में जहर मिलाया? कहने लगी आपको किसने खबर दी? आपने फरमाया बकरी के इस हाथ ने खबर दी जो मेरे हाथ में, यानी दस्ती का जो गोश्त है ना, उस गोश्त से मुझे पता चल गया इसमें जहर है। उसने इकरार किया, कहती हाँ मैं मानती हूँ मैंने डाला है, देखिए जरा। आपने कहा क्यों किया? अब जवाब सुनिएगा, कहने लगी, इसलिए कि अगर आप सच्चे नबी हैं ना तो मेरा ईमान है कि आपको खबर हो जाएगी जैसे कि अब हो गई है, और अगर आप नबी नहीं हैं तो हम एक झूठे नबी से आज़ाद हो जाएंगे। बात समझ रहे? फिर अल्लाह के नबी ने क्या किया होगा, मार तो इसको, छोड़ दिया। आज हम छोटी छोटी बातों पे नबी के कार्टून बनाएं, कोई ये करें वो करो, शोर गुल कर करा के फिर उन्हीं के रंग ढंग में ढल जाते हैं। आपने उस औरत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने एक तो सच बोला और दूसरा ये कि उसकी नीयत बकौल उसके ये थी कि चेक करूं कि ये सच्चे नबी है नहीं। और आप कहते जिस जिस साथी ने वो गोश्त खाया वो वफात पा गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नहीं, उस वक्त आपने फिर अपना हजामा करवाया, जैसे खून अंदर से निकलवा लिया, लेकिन आप फरमाया करते थे कि हर साल मुझे बाद में वो गोश्त तकलीफ देता रहा और बिल आखिर आप उसी के असर से वफात पाई थी, तो लिहाजा ये तख्तुलून है। चलिए अगला रवैया देखिएगा आयत 88 में, वकालू और उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, यहूद ने जिनकी बात हो रही है, कुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल तो गिलाफ हैं। ये नहीं कहा कि कुलूबुना फिल गुल्फ, गुल्फ जो ना ये अगलफ की जमा है, उर्दू में बोलते हैं कुरान का गिलाफ, तो गुल्फ जो है ना वही लफ्ज है अगलफ से, किसी चीज के ऊपर पर्दे डालना। अब यहां होना क्या चाहिए था, लफ्ज वकुलूबुना फिल गुल्फ, लेकिन ये नहीं आया, बल्कि कहा कि वकुलूबुना गुल्फ, हमारे तो दिल खुद ही खिलाफ बन चुके हैं। स्टबननेस और ढीठपन था उनका, मजाक करते थे, कहते थे हमारे दिल सील्ड है जैसे वैक्स्ड है, इसके अंदर कुछ नहीं जा सकता, बाहर से कुछ नहीं आना। देखिए आप इसको अपने ऊपर लें, अपने बच्चों पर ज्यादा मिसालें समझ आती हैं, क्योंकि हम तूतकार माओ की मैंने बच्चों के साथ ही ज्यादा देखी है। आप बाज दफा देखते हैं कि बच्चे इतने सर चढ़ जाते हैं ना कि आखिर कहते हैं जो मर्जी कर ले मैंने नहीं करना। एक होता है आप कहते हैं, बच्चा कहते हैं अच्छा करता हूँ, फिर नहीं करता। लेकिन एक वो वक्त आ जाता है कि जब वो इतना ढीठ हो जाता है, वो कहता है अब जो मर्जी कह ले मैंने नहीं करना। तो यहाँ कुलूबुना गुल्फ क्या है, उनकी ढिठाई, कहते हैं हमारे दिल खुद ही खिलाफ बन चुके हैं, ये शिद्दत है। ये ऐसे जैसे किसी को आप ये कहें ना फलां शेर है, और दूसरे को आप कहें फलां शेर जैसा बहादुर है, तो शेर आप अपने बच्चे को कहते ये मेरा शेर है, तो वही बात है, शेर कहकर आपने उसको बहादुर कहा। तो यहाँ कुलूबुना गुल्फ कहकर अल्लाह ताला ने यही बात सामने रख दी कि उनके दिल गिलाफ है। बल लानहुम अल्लाह बिकुफ्रिहिम, बल्कि ये तो अल्लाह की लानत है इन पर, यानी वो गिलाफ क्या था, लानत ही। और गिलाफ क्या था कि हक बात का हमारे दिल पे असर नहीं होता, हमारा दिल ही नहीं लगता इसमें, हमें फोकस्ड ही नहीं रहता इसका, हम इसमें इतनी देर नहीं रह सकते। 3 घंटे बैठ के नॉन स्टॉप फिल्म देख सकते हैं, 3 घंटे बैठकर हम एक सवारा नहीं इकट्ठा सुन सकते दौरे कुरान में, बहुत मुश्किल है, फिर हमारी आखिर में तवज्जो कम हो जाती है। तो अल्लाह कहते हैं नहीं, ये असल में दूरी है, लान का जो लफ्ज है ना दूरी को कहते हैं, बोध को, बाईद का लफ्ज भी इसी से है, यानी जब बंदा बात सुनना नहीं चाहता ना, अल्लाह उसका दिल उससे उठवा लेते हैं, पर्दों में पड़ी हुई चीज पे क्या असर होगा। आप देखते ना ऊपर वैक्स लगा के आप किसी चीज को ऑयल में डाल दें, जब आप वो प्लास्टिक रैप उठाए रहेंगे एक कतरा भी ऑयल का नहीं गया। पानी में डाल दीजिए एक चीज को प्लास्टिक कोट करके, उतारेंगे अंदर नहीं होगा। असल मुराद पता क्या था, कहते थे, अब बड़ी गौर से सुनने की बात है, ये नोट कीजिएगा क्योंकि आज भी लोग यही कहते हैं, कहते हैं हम अपने अकीदे में बड़े पक्के, कोई हमें कुछ भी कह ले हमें फायदा नहीं होना, हमें नहीं असर होता। वो मेरी अम्मा और मेरी नानी रजब के कुंडे भरती थी ना, मैंने भी भरने, इतने पक्के हो चुके होते हैं अपनी गलत चीज पे, बाज दफा जम जाने को अपना कामयाबी कहते हैं, तो तासुब है, जाहिलाना तासुब है। कहते थे हमारा दिल बड़ा महफूज है, हम शुक्र है तुम्हारी बातों से मुतासिर नहीं हो रहे। आगे आप पढ़ेंगे कुरान का एक असर होता था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ पढ़ते थे, तो लोगों का दिल रोता था, आंखों में आंसू पड़ते थे, लेकिन ये कुरान की क्लास में या कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब महफिलों में कभी बैठते भी थे, ये तो नहीं है कि यहूद अल्लाह के नबी के पास नहीं आते, आते थे लेकिन वो बिल्कुल फोकस नहीं होते थे। कोई पूछे भी तुम फोकस क्यों नहीं हो, तो कहते थे हमें नहीं असर होता, कोई नई बात नहीं थी, कोई खास बात नहीं लगी। अल्लाह ताला कहते हैं असल बात क्या है कि बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फकलीलम मा युमिनून, बहुत थोड़ा ईमान लाएंगे। ये जो माँ है ना, इसको फिर वही आज के सबक में बहुत दफा ये मिसाल आ रही है, माँ जो होता है ना किसी चीज को और भी छोटा कर देता है, पहले ही नकरा और उसके ऊपर फिर माँ। नंबर एक इसका मतलब कि थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं, और दूसरा मानी जो ईमान लाते भी हैं वो ईमान की इंटेंसिटी भी बहुत थोड़ी है। समझ गए? दोनों मानी मुराद है। यानी असल बात यह है कि इतना प्यारा दीन नबी के सामने इनको मिल रहा था, ये फिर भी उससे लेना नहीं चाहते थे। हजरत इब्ने अब्बास से कॉल है, कहते हैं यहूद ने कहा हमारे दिल इल्म के मखजन है। मखजन किसको कहते हैं? खजाना छुपा हो जा। ये पहले ही इल्म और मार्फत से भरे हुए हैं, अब इसमें इल्मे मोहम्मद के लिए कोई गुंजाइश नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी कितने लोग हैं जिनको अपने इल्म का बड़ा गर्र है, बड़ा मान है, कहते हैं हमें और नहीं चाहिए, पहली बहुत है, गिर गिर पड़ रहा है, अमल भी नहीं झलकता। याद रखिए कि इल्म अगर आपने देखना है ना अपना या किसी का भी, तो अमल से देखेंगे, तकवा से देखेंगे। वरना तो अखबारें पढ़ने वालों के पास सबसे ज्यादा इल्म है, आपको भी नहीं पता इस वक्त इसराइल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। हो सकता है आपके घर के किसी बुजुर्ग को सारा पता हो। खबरें पढ़ने का नाम इल्म तो नहीं है, इल्म किस बात का? मार्फत का नाम है। तो अल्लाह ताला ने असल में इन पे एक चोट दी है कि हक को कबूल करने की सलाहियत नहीं रही। और क्या अल्लाह ने ये सलाहियत पहले दिन से छीन ली थी? नहीं। जब पिछले रवैये याद करें, कौमें अपनी किताबों को एक्सरसाइज बुक बना दें, यानी आपको एक किताब दी जाती है और एक कॉपी दी जाती है ना, किताब से पढ़िए कॉपी में लिखिए, ऐसी है ना। और अगर आप किताब पे ही लिखना शुरू कर दें, असल लिखा हुआ भी भूल जाए। मुझे हैरत होती है जब लोग किताबों पे या पारों पे लिखते हैं तो वो खिचड़ी सी पकी हुई बात में उनको नजर आएगी। तो जब किताब पढ़ने की चीज थी, दीन की बात, उस पे आप कुरान में अपनी मर्जी की चीजें लिखने लग जाएं, तो फिर आपकी लिखी और अल्लाह की लिखी में फर्क ही नहीं रहेगा। तो पता क्या चला कि इनका ईमान बहुत थोड़ा है, खुद भी थोड़े और ईमान भी थोड़ा है।